श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज के इस 10 मई के संध्या जागृत में आप सबका स्वागत है। कल के दिन अक्षय तृतीया थी और गुड़ी पाड़वा, दशहरा और एक और दिन है पवित्र दिन, और आधा दिन अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का जो दिन है उसको 3.5 मुहूर्तों में से एक महत्वपूर्ण मुहूर्त माना गया है। आधा मुहूर्त जो है अक्षय तृतीया है, बाकी तो गुड़ी पाड़वा है, दशहरा है और एक दिन है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। हाँ नहीं नहीं, वो 3 पूरे मुहूर्त माने गए हैं और एक आधा मुहूर्त माना गया है। और अक्षय तृतीया का महात्म्य यह है कि इस दिन जो भी हम करते हैं वो अक्षय हो जाता है, इटर्नल शाश्वत बन जाता है। वैदिक संस्कृति में अक्षय तृतीया को बहुत महत्व है। इस दिन में जो भी कार्य करेंगे उसके लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना मुहूर्त के आप कोई भी अच्छा कार्य आपको लगता है जो पवित्र है दिव्य है वो आप शुरू कर सकते हो। तो कर्मकांड की दृष्टि से लोग सोचते हैं कि चलो दुकान खोला जाए, विवाह किया जाए, ऐसा अपना अपना तरीका होता है ना। खुद को केंद्र स्थान में रख के, कीपिंग वन सेल्फ इन द सेंटर, जो अच्छा अपने को अच्छा लगे, अपने के लिए अच्छा है, वो लोग सोचते हैं कि वो करना चाहिए उस दिन। मतलब पैसा चाहिए तो उस दिन दुकान खोलना चाहिए, या तो वैवाहिक सुख चाहिए तो उस दिन शादी करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को सुनकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि वेद में किधर भी कहीं भी इस दिन गोल्ड खरीदना चाहिए ऐसा लिखा नहीं है। वो केवल कुछ व्यापारियों ने इसको ऐसा हवा चलाया है, ऐसा चलाया है कि लोग समझते हैं कि अक्षय तृतीया का मतलब सोना खरीदना चाहिए। दशहरे के दिन भी सोना खरीदना चाहिए ऐसे कहीं भी किधर लिखा नहीं है, लेकिन दशहरे के दिन में भी यही चलता है, दिवाली के दिन भी यही चलता है। लोग बिजनेस कैसा करना वो बढ़िया लोग जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन शास्त्र में कहीं भी उसका विधान नहीं है। तो किस बात पर उन्होंने ये बात को बेचा, इस विचार को कि देखो आप सबको सोने की जरूरत है, आपको सबको धन की जरूरत है, तो इस दिन खरीदो। आप इस खरीदोगे तो माला माला हो जाओगे। तो सब लोग खरीद रहे हैं गोल्ड, गोल्ड कॉइन बना के दे रहे हैं, सरस्वती का कॉइन बना के दे रहे हैं, गणपति का कॉइन बना के दे रहे हैं, हाँ क्या क्या धन लक्ष्मी का कॉइन बना के दे रहे हैं। और लोगों को लगता है आज हम गोल्ड खरीदेंगे तो जिंदगी में सोने से माला माल हो जाएंगे। तो भक्त लोग जो होते हैं ना, वैष्णव लोग, वो कभी भी किसी वस्तु को बिना भक्ति के संबंध के देखते नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हरे कृष्णा, ज्यादा ही बड़ा हो गया अभी, फिर बात दूर से बोलता हूँ। तो भक्त लोग जो होते हैं उनकी विशेषता ये है कि हर चीज को भगवान के संबंध में ही देखते हैं और भगवान के संबंध के बिना किसी भी चीज को नहीं देखते। इस रूप गोस्वामी कहते हैं ना, हमेशा कृष्ण को याद करो और कभी भी कृष्ण को ना भूलो। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर राइट सेंटेंस है। कभी भी उनको मत भूलो, हमेशा उनको याद करो। तो वैसे भक्त लोग हमेशा हर चीज को भगवान के संबंध में देखते हैं और किसी भी चीज को बिना भगवान के संबंध के नहीं देखते। जो इस तरह से जीता है जिंदगी में, वो हमेशा खुद तो प्रसन्न रहता है, हमेशा आनंद रहता है और दूसरों को भी आनंदित कर देता है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को भगवान को साथ जोड़ने में एक्सपर्ट हो जाता है उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, क्योंकि भगवान स्वयं खुशी है, आनंद है, स्वयं आनंद मूर्ति है भगवान। अगर आप हर वस्तु में भगवान को जोड़ सकते हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, हर व्यक्ति में आनंद जोड़ रहे हो, क्योंकि कृष्ण जो है वो स्वयं आनंद है, इस पर्सोनिफाइड हैप्पीनेस ब्लिस। तो यही जीवन के यश का रहस्य है। हम चाहे 100 साल जिएंगे या 10 साल जिएंगे या जवानी में मर जाएंगे या तो 110 साल तक जीवित रहेंगे, अगर मनुष्य जीवन में रहते हुए आपको यशस्वी बनना है तो एक ही रहस्य है उसका, कि हर चीज़ को कृष्ण से जोड़ दो और किसी भी चीज़ को लेते हुए कृष्ण को जोड़े बिना मत लो। हमारे गुरु भाई वो दिन प्रवचन कर रहे थे, इतनी सुंदर बात कही उन्होंने कि वो उन्होंने कहा कि जो कर्मकांडी होता है ना, कर्मी, थोड़ा कम करो आप जरा, वो केवल इस दुनिया में जीना चाहता है, बस उसको मरना नहीं है, उसको यही रहना है, यही मेहनत करनी है और यहीं पर समृद्धि प्राप्त करनी है, हरे कृष्ण, धन धन संपत्ति प्राप्त करनी है, यश प्राप्त करना है, कीर्ति प्राप्त करनी है, नाम प्राप्त करना है, उधर मत देखो आप, इधर देखो। तो कर्मी वॉन्ट्स टू लिव इन दिस वर्ल्ड, ये लिखने से आके यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और जो ज्ञानी है उसको इस दुनिया से चले जाना है, विरक्त हो गया वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, दुनिया में कुछ दम नहीं है, सब जगह दुख ही दुख है, दुखालयम अशाश्वतम। तो ज्ञानी को दुनिया छोड़नी है, कर्मी को दुनिया में रहना है, और भक्तों को क्या करना है, भक्तों को जहाँ भी रहना है वहाँ भगवान की सेवा करना है। सच अ बिग डिफरेंस, क्योंकि कर्मी जब इस दुनिया में रहने का प्रयास करता है तो वो खुद का खुशी चाहता है, उसको इंद्रियों को भोग चाहिए, इसलिए वो इधर रह के उसको प्रयास करना है, या तो उसको शरीर का सुख चाहिए, या तो धन का सुख चाहिए, या तो उसको यश का सुख चाहिए, या तो कुछ ना कुछ चाहिए, उसको खुद के लिए चाहिए। जब ज्ञानी इस दुनिया को छोड़ना चाहता है तो भी वो खुद के लिए ही छोड़ना चाहता है, उसको भगवान का कोई कनेक्शन नहीं है। आई एम फेड अप, मुझे दुनिया से दिल उड़ गया है, अभी मुझे दुनिया में रहना है, मैं ही केंद्र स्थान में हूँ, आई एम द सेंटर, मुझे ही बोर हो गया है अभी, मुझे जाना है। लेकिन भक्त एक ऐसा व्यक्ति होता है वो खुद के लिए जीता ही नहीं है, या तो वो भगवान के लिए जीता है, या तो भगवान के भक्तों के लिए जीता है, या अन्य जीवों के लिए जीता है वो, जैसे उसकी स्थिति है। अगर कनिष्ठ अधिकारी है तो भगवान के लिए ही जीता है वो, मध्यम अधिकारी है तो भगवान और भगवान के साथ भक्त जो हैं उनके लिए जीता है, और उत्तम अधिकारी है तो भगवान, उनके भक्त और सारे प्राणी मात्र उनके लिए जीता है वो, इज नॉट लिविंग फॉर हिमसेल्फ। हम भक्त कब बनना शुरू करते हैं, वॉट इज द टाइम वेन वी एक्चुअली स्टार्ट बिकमिंग डिवोटी, जब हम दूसरों के लिए जीना आरंभ करते हैं उस दिन से हम भक्त बनना शुरू करते हैं। तब तक तो हम जप कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन खुद के लिए कर रहे हैं, सेल्फ, हम लोग ही केंद्र स्थान में उसके। जब वो खुद का केंद्र स्थान से हटकर जब भगवान और उसके भक्तों को रखता है तो उसका भक्ति हम कह सकते हैं कि शुरू हो रही है, इट्स बिगिनिंग। तो ये बात हमको सबको समझना चाहिए, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड। तो अक्षय तृतीया को इस तरह से मत देखिए कि हमको भी नया कपड़ा खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी घटनाएं घटी हुई है, अभी मैं सब बताना शुरू करूँगा ना आपको तो रात के 12 बज जाएंगे। एक्चुअली इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं इस दिन की, लेकिन एका दो बताएंगे आपको, लेकिन सब बताएंगे जरूर आपको। हाँ, जैसे कि ये जो है ना, ये परशुराम जयंती का दिन है। परशुराम भगवान के कितने नंबर के अवतार हैं? विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, इसमें परशुराम का नंबर कितना है? चलो गिनेंगे, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, फिर परशुराम, छठवा अवतार। परशुराम के बाद में राम अवतार, राम के बाद में बलराम अवतार, बलराम के बाद में कल्कि अवतार, नहीं बुद्ध अवतार। विष्णु के 10 अवतार की बात कर रहे हैं हम, योग अवतार की बात नहीं कर रहे हैं। योग अवतार अलग है, टोटली डिफरेंट। सत्ययुग का डिफरेंट, त्रेतायुग का डिफरेंट। एक युग अवतार भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक युग अवतार, सत्यावेश अवतार, एक मनवंतर अवतार, ऐसे अलग 6 प्रकार के अवतार होते हैं। एनीवेज, सब टेक्निकल बातें, सब भागवत में दी है। एनीवेज, तो परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। और पृथ्वी पर जब क्षत्रियों ने अपने क्षत्रिय होने का पद का गलत इस्तेमाल करके लोगों को कष्ट देना और स्वार्थ को पूर्ति करना शुरू किया, तो भगवान ने यह अवतार लिया और क्षत्रियों का अहंकार नष्ट करने के लिए केवल उनको काटा, बस। इतने बलवान थे परशुराम जी कि अपना परशु लेकर जो जाते थे ना, तो सारे राजा भागते थे। उन्होंने केवल 2-3 लोगों को डिस्काउंट दिया था कि मेरे सामने क्षत्रिय है वो बचेगा, अगर वो औरतों के बीच में बैठ गया है तो बच जाएगा वो। तुझे, मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे अभी परशुराम जी आ रहे हैं, तो मैं आपको बोला कि आ जा, सब ला जाओ, मैं गोल बैठ जाओ, इधर सर्कल करके बैठ जाओ। उसको कहते हैं नारी कवच, जो नारी का कवच बना के बैठेगा वो बच जाएगा उनसे। तो कितने लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं ना, वो ऐसे अपनी स्त्रियों को लेकर बैठते थे तो उसको नहीं मारते थे वो। और एक कंडीशन था उनका कि उनको नहीं मारूंगा, वो ये था कि जो जो क्षत्रिय विवाह करने बैठा है उसको नहीं मारूंगा मैं। तो कई राजाओं राजा उस समय विवाह करने बैठ जाते थे, कोई भी योग्य कन्या को लेकर बैठे, भाई तुम तो पत्नी बन जाओ मेरी, आओ मंत्री सब क्या बोलते हैं, पुरोहित जी आ जाओ, मंत्र बोलो फटाफट, अभी परशुराम जी आ रहे हैं, तब तक चालू रखो, एंड मत करो, कुछ ना कुछ बोलते रहो, मंत्र सप्तपदी सिंदूर दान जो भी है करते रहो। तो इसमें कहा गया है कि दशरथ राजा ने 350 औरतों से विवाह किया इसी चक्र के अंदर, क्योंकि 21 बार गए ना वो, तो कई बार उन्होंने, दशरथ राजा भी तो क्षत्रिय थे, वो डरपोक नहीं थे लेकिन संत थे वो, फिर भी तो वो क्षत्रियों का संहार करने को निकले थे ना वो, ऐसे मैंने सुना है, आई डोंट नो। तो वो परशुराम जी का अवतार इस दिन हुआ था, वो जमदग्नि के पुत्र थे, रेणुका और जमदग्नि के पुत्र थे। तो उनके पिताजी को उन्होंने अपने बल से जीवित किया था, उसका सर काट के शत्रु गया था, फिर भी ऐसे महान अवतार थे भगवान के। लेकिन उनको कहा गया था कि जिस दिन हे परशुराम जी, जिस दिन आप किसी के सामने जाओगे और आपका सारा बल आपको लगेगा कि गया निकल के आपसे, जिस दिन आपको लगेगा ऐसे कि आप किसी भी व्यक्ति के सामने जाओगे तो आपको लगेगा आपका सारा बल डिस्चार्ज हो गया पूरा, ऐसा लगेगा आपको, उस दिन आपका अवतार समाप्ति का समय आएगा, उस दिन आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। तो वो समय कब आया? जब प्रभु रामचंद्र को मिले वो। प्रभु रामचंद्र वो छोटी उम्र के थे, सीता जी को शादी करके अपने अयोध्या में ले जा रहे थे मिथिला से, उस दिन आए वो। कौन है वो बालक, किसका इतना साहस जो शिव धनुष को तोड़ दिया, इतना अहंकार किसके अंदर है? तो प्रभु रामचंद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं ही हूँ, जो दंड देना है दे दीजिए, अगर आप इतना क्रोधित हैं हमारे ऊपर, अगर मैंने अपराध किया है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं। अच्छा, तुम ही हो बालक, अरे तुमने बड़ा क्या काम किया। वो तो विष्णु और शिव जी का जब युद्ध हुआ था उसमें विष्णु ने एक बार हुंकार किया था, ऐसा को हुंकार कहते हैं, वो हुंकार के प्रभाव से वो निस्तेज हो गया था शिव धनुष, वो तुम्हारे पास था, उसको तुमने तोड़ा है, मेरे पास विष्णु का धनुष है, जो हुंकार देकर उसको बलहीन नहीं किया गया है, पूरा एक्टिव है वो, ये डिस्चार्ज है, ये एक्टिव है पूरा। लो संभालो इसको, इसको उठा के दिखाओ। तो उसको भी प्रभु रामचंद्र ने उठा के दिखाया। और उस समय परशुराम जी को ऐसा महसूस हुआ कि मैं शक्तिहीन हो गया हूँ, ऐसा लगा कि मैं शक्ति मेरी पूरी खत्म हो गई है, एकदम निस्तेज निर्बल हो गया मैं। तो अचानक उनको प्रभु रामचंद्र की छवि में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन हुआ, तो समझ गए कि मेरा अवतार कार्य समाप्त हो गया है। तो उसने प्रणाम किया, उनको क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ करना, और वो महेंद्र पर्वत पर जप करने के लिए चले गए। तो वो परशुराम जी जो हैं, हमारा जितना गांव है ना, हमारा गांव जो गोवा से शुरू होता है और गोवा से नीचे कन्याकुमारी तक वो जो क्षेत्र है उसको परशुराम क्षेत्र माना गया है, क्योंकि परशुराम जी ने 21 बार संहार किया क्षत्रियों का और 7 कुंड खून के बनाए हैं उन्होंने। जितको जिसको काटा उसका खून से 7 कुंड बने उनके, बोलो। वो आज पवित्र तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं उधर कुरुक्षेत्र के पास में, सन्नीत सरोवर वगैरह वगैरह, ब्रह्म सरोवर ऐसे। तो फिर उन्होंने एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, जो कोई संघार करता है तो उसका पश्चाताप भी करना चाहिए, प्रायश्चित भी करना चाहिए। तो वो हमारे गोवा के पास गए और वहाँ एक जगह है मंजेश्वर, वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने परशु फेंका ऐसा आकाश में, और वो परशु जो है ना वो 100 किलोमीटर गया, सबने 1000 किलोमीटर गया, समुद्र तक पहुँचा वो। और समुद्र इधर भी था, पश्चिम समुद्र, हम गिल गाँव उस पर थे। तो वो ऐसा फेंका तो 100 किलोमीटर का भूमि जो है वो समुद्र पीछे हट गया और पूरा कन्याकुमारी तक 100 किलोमीटर का पट्टा तैयार हो गया। और जितनी भूमि बनी ना वो सारी भूमि उन्होंने 10 ब्राह्मणों को दान कर दी, उसमें हमारे कुल के ऋषि जो है भारद्वाज वो भी उसमें थे, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं ये भूमि आपको दान दे रहा हूँ मेरे पाप के पाए, मतलब मेरे जो संहार किया उसकी वजह से, और आप लोग आराम से यहाँ पर रहो, इस जगह पर कभी अकाल नहीं आएगा, बहुत धुआंधार वर्षा होगी, हाँ हरियाली रहेगी हमेशा, नदियाँ बहती रहेगी जोरदार, और आप लोग आनंद से रहो। जब भी संकट आएगा ये लो एक मंत्र ले लो, ये मंत्र का उच्चारण करना तो मैं आ जाऊँगा और समस्या का समाधान करूँगा। मतलब समस्या आएगी नहीं, आएगा तो मैं हूँ बस, ऐसा मतलब क्या फुल प्रूफ बना दिया आपका जीवन के लिए, नो वेयर देर बी ट्रबल। इसलिए हमारा गांव कैसा है ना, उड़पी केरला कन्याकुमारी हरा भरा, हर ट्रेन में जाएंगे आप ना हर 5 मिनट में एक नदी आएगी, लिटरली हर 5 मिनट में एक बड़ी लंबी चौड़ी नदी आएगी, तो ऐसा पात्र रहेगा उस समुद्र जैसा पात्र रहेगा मीठे पानी का, नारियल के झाड़ फल 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 फूल सब भरे हुए हैं उसके अंदर। कभी भी आप हमारे गांव जाइए, कभी अकाल नहीं पड़ेगा मिलेगा आपको, कभी भी नहीं मिलेगा, धुआंधार वर्षा धन धान्य की समृद्धि सब मिलेगी आपको। 10 ऋषि बहुत खुश हो गए, उन्होंने जमीन प्राप्त किया और आनंद से रहने लगे। तो बहुत समय बाद उनको ऐसा प्रश्न मन में आया कि अरे वो मंत्र का क्या हुआ। जैसे कुंती को भी कुतूहल हुआ ना, कुंती को 5 मंत्र मिले थे दुर्वासा मुनि से, तो एक कन्या थी वो, उसको तो बालपन में कुतूहल हुआ, रही क्या है ये मंत्र, लेट मी ट्राई, थोड़ा कोशिश तो करते हैं। तो जब मंत्र उच्चारण किया सूरज सूर्यदेव आ गए, कान में से बच्चा पैदा हो गया, हाथ में सीधा डायरेक्ट बच्चा रेडीमेड, 9 महीने की जरूरत नहीं है, सीधा हाथ में क्राइंग बेबी इन द हैंड। वो भी कान से आया तो वो कन्या की कन्या रह गई, वो कुमारी रह गई, और कान से जन्म हुआ तो फिर वो कन्या, उसका जो सतीत्व था वो ऐसा ही रहा, शील उसका भंग नहीं हुआ। तो परेशान हो गया, अरे बाप रे मैं तो ट्राई किया था, लेकिन ट्राई का किया था पर ना, बोले ट्राई थे आपने मंत्र उच्चारण किया तो हमारा कर्तव्य है कि मंत्र को हमको उत्तर देना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहते नहीं 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 मुझे बालक नहीं चाहिए। कहता है देखो आपने जिस मंत्र का उच्चारण किया है वो मंत्र का मैं दास हूँ, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने हमको सबको वश में करके रखा है, तो हम इस मंत्र के दास हैं, हमारा कर्तव्य है इस मंत्र जो उच्चारण करेगा उसको पुत्र देना है। तो कहते मैं तो कन्या हूँ, मैं तो कुमारी हूँ, कोई बात नहीं तुम्हारा कुमारी जो स्थिति है वो भंग नहीं होगी, कान से जन्म होगा आप कुमारी रह जाओगे। और ऐसा कुछ ही क्षणों में हाथ में बालक हाथ में बेबी, उसी तरह से ये 10 लोग ब्राह्मण लोग थे भारद्वाज मुनि वगैरह वगैरह, उनको कुतूहल पैदा हुआ कि क्या है ये मंत्र। तो परशुराम भगवान ने कहा था कि आपको साथ में आकर इसका उच्चारण करना है, सब साथ में आ गए, जैसे हम लोग साथ में आकर कथा सुन रहे हैं, साथ में आ गए, उन्होंने मंत्र उच्चारण किया और मंत्र उच्चारण करते ही परशुराम प्रकट हो गए। डर गए, उनको लगा बाप रे अभी ये तो क्रोधित भगवान को कौन फेस करेगा। लेकिन क्या करे, मंत्रोच्चारण तो कर लिया, परशुराम तो आ गए, बोलो क्या समस्या है। तो कहते हैं भगवान कोई समस्या नहीं है। तो फिर मंत्रोच्चारण करने का साहस क्यों किया आपने? बोला ऐसा ही ट्राई कर रहे थे। बोला अच्छा, आपने मेरे दिए हुए मंत्र पर संदेह किया, जो मैंने कहा उस पर आपने संदेह किया, उसको ट्राई करने की कोशिश किया, आपको श्रद्धा नहीं है, आप इसका परिणाम भोगोगे, आपके राज्य में अकाल पड़ेगा और आपके 10 लोगों के अंदर जो एक ही है, जो फ्रेंडशिप है, वो टूट जाएगी। अभी हम लोग बोलेंगे टूटने दो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ किसको पड़ी है किसकी, ये हमारा आपका विचार है आज का कलयुग का। पुराने जमाने में रिलेशनशिप्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। एक साधु दूसरे साधु से अगर चिढ़ गया, टूट गया उसका दोस्ती, तो बहुत बड़ी बात होती थी, दुख करते थे लोग कि हमारा एक संघ टूट गया। तो आज अगर बोलेंगे ना कि आप लोगों का मित्रता खत्म हो जाएगी, तो नए ढूंढ लेंगे, इसमें क्या है, नहीं तो पुराना गया काम से, वैसे भी उसका एक्सपायरी डेट हो गया था, चलता है। ऐसा नहीं, उनको बहुत दुख हुआ, बहुत बड़ा भयंकर शाप था उनके लिए कि आपकी एकता नष्ट हो जाएगी। तो बहुत गिड़गिड़ाए, रोए वो लोग सब लोग। उन्होंने कहा कि महाराज माफ़ करना, हमने तो बचपना किया, इतने ऋषि होने पर भी हमने बचपन जैसे काम किया, कुछ क्षमा कीजिए आप। तो फिर वो दया आकर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आने वाले जो होता ना समृद्धि का मौसम, जैसे कि बाहर आते हैं ना वसंत ऋतु आता है, फिर फल आते हैं, फूल आते हैं, फसल आती है ना। साउथ इंडिया में बारिश आती है तो उसके एंड में बहुत धान्य आता है, वो सब लटकाते हैं अपने घर पे, चावल वगैरह, सुपारी का डेकोरेशन करते हैं, बहुत समृद्धि है वहाँ पर। अगले आने वाले मौसम में जब फल फूल बाहर आएगी, तो फल और फूलों से जब तुम भगवान विष्णु की सेवा करोगे 10 दिन के लिए, तब तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। और उस उत्सव को क्या कहते हैं, ओणम। ओणम उस उत्सव का नाम है जिसमें सभी लोग मिलकर आकर भगवान की फूल फलों से सेवा करते हैं। और एक और विशेष बात उसमें है कि सब लोग, जितने भी लोग आपके सामने आएंगे, उनको भोजन करते हैं, कराते हैं उस उत्सव में। वो भेदभाव किसी का करते नहीं, गरीब अमीर, क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम, किसी का भेदभाव नहीं करते हैं। उस 10 दिन में जो भी सामने आएगा उनको प्रेम से भोजन कराते हैं, बुला बुला के खिलाते हैं, पंच पकवान बनाते हैं, बहुत आइटम बनाते हैं, सबको बुला बुला के खाना खिलाते हैं। इसलिए हमारा जो गाँव है वो भरभराट, मतलब समृद्धि से भरा हुआ है। तो कई कहानियाँ परशुराम जी की, तो सोचा आपको परशुराम के बारे में बताने होगा, इसलिए मैंने भगवान परशुराम के बारे में सुनाया, जिनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, रेणुका और जमदग्नि के द्वारा। जमदग्नि भी सप्तऋषि में से एक ऋषि है, वो भी क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे बहुत। उनके पिताजी का वध किया तो जाके उनका भी वध करके आए, बहुत जोरदार थे, तभी से उनका गुस्सा आया था कि क्षत्रियों ने आकर मेरे पिताजी को उल्लू बनाकर उसको मार डाला। अभी मैं न केवल जिन्होंने उनको मार डाला, सारे क्षत्रियों का संहार कर दूंगा, कुल समेत नष्ट कर दूंगा, क्षत्रिय जात नष्ट कर दूंगा। ऐसे क्रोध से निकले वो बार, बहुत पावरफुल। जब वो आते थे ना, हजारों सूरज के समान आते थे वो, सब लोग भाग जाते थे उनको देख के, और सबका फिर भी संहार करते करते पूरा विश्व को 21 टाइम्स प्रदक्षिणा किया, काटते हुए सबको। मास किलिंग एक साथ में, और जबरदस्त पर्सनैलिटी है परशुराम जी की। दूसरी बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन पृथ्वी पर गंगा जी का आगमन हुआ। गंगा जी जो है वो बहुत लंबी कहानी है, दिलीप राजा, सगर राजा थे, सगर राजा के 60,000 पुत्र थे। उस 60,000 पुत्रों ने मस्ती में आकर एक बार ऋषि का अपमान किया। लोग समझते नहीं ऋषि का पावर क्या होता है, क्या ऋषि है, तो हम लोग उसको दक्षिणा देते हैं, उस पर जीता है वो, है पुजारी जल्दी जल्दी खत्म करो, टाइम हो रहा है रिसेप्शन का, जल्दी जल्दी मंत्र बोलो, कितना टाइम लगाते हो। अभी अभी की बात है, मैं 17 अप्रैल को गया था एक शादी में, एक आदमी आकर जोर जोर से चिल्ला रहे, हे महाराज कितनी देर लगा रहे हो, 2 बार बोल के गया, अभी तक चल रहा है आपका, क्या अभी क्या बाकी है। अरे बेटा सिंदूरदान बाकी है। तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी मंत्र बोलो, फटाफट लगाओ, फटाफट करो। हाँ मैं आंखों में देखते, एक बार तीन चार बार आके चिल्ला के गया हो, मतलब पुरोहित को कोई वैल्यू ही नहीं है, जो ब्राह्मण है जिसकी वजह से विवाह का बंधन हो रहा है, कुछ वैल्यू ही नहीं है उसको। हरे कृष्णा। तो ऐसे ही राजा का पुत्र होने की वजह से, गर्व होने से अहंकार होने से ये ऋषि का ऐसा मजाक मजाक में अपराध कर लिया। तो ऋषि तो कैसे होते हैं, बहुत देर तक जप करते रहते हैं, एक बार उनका तार टूट गया फिर सबका शॉर्ट सर्किट कर देते हैं लिटरली। एक बार उनका सटक गया तो फिर उन्होंने ऐसा साप दिया 60,000 लोगों को भस्म कर दिया ऑन द स्पॉट। तब तक तो भजन कर रहे हैं, क्या है कुछ नहीं कर सकते ये लोग, लेकिन जब करेंगे तो उसका परिणाम देखो। उसके बाद में जो लाइन लगा तपस्या का इनका उद्धार करने के लिए, पीढ़ी से पीढ़ी करते रहे। फिर सगर के राजा दिलीप हुए, दिलीप ने अपना जिंदगी भर तपस्या किया, पूरा नहीं हुआ, खत्म हो गए। दिलीप के पुत्र अंशुमान, अंशुमान ने तपस्या किया, उनका जीवन में कुछ नहीं हुआ। अंशुमान के पुत्र भगीरथ आए, फिर वो बोलते ना भगीरथ प्रयत्न किया, अब नाम ही पड़ गया, क्यों नहीं अब भयंकर प्रयत्न किया तो उसको बोलते भगीरथ प्रयत्न किया उसने। तो भगीरथ ने फिर उसको बताया था, मतलब सगर राजा को ही बताया गया था जब तपस्या शुरू किया कि इसको गंगा जी को लाएंगे ना तो ही ये लोग बच सकते हैं, इनका उद्धार हो सकता है। तो सब लोग तपस्या कर रहे हैं किसके लिए, एक ही कारण के लिए, गंगा जी को पृथ्वी पर लाना है। लेकिन सब लोग जिंदगी भर तपस्या करते रहे लेकिन उनको फल नहीं मिला उसका। फिर जाकर उन्होंने भगीरथ ने तपस्या किया, भगीरथ ने फिर गंगा जी को प्रसन्न किया। तो गंगा जी बोली हाँ मैं आऊंगी, लेकिन एक कंडीशन है मेरी, मेरा वेग इतना है कि मेरा वेग लेकर अगर मैं आऊंगी तो पृथ्वी भी गेंद की तरह बह जाएगी। तुमने आपने यहाँ पर एक बॉल रखा, मैंने बड़ा पाइप से पानी छोड़ा और बोला कि वो अभी गेंद जो है ना वो पाइप का पानी पकड़ेगा, कैसा पकड़ेगा वो पानी उसको गेंद को ही लेके आगे चला जाएगा और गेंद भी आगे जाएगी पानी के साथ। वैसे पृथ्वी बह जाएगी, तो मेरे वेग को संभालने के लिए कोई चाहिए मुझे जो योग्य है। तो बोलते कौन है वो, बोलते एक ही व्यक्ति है, पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति, वो है शिव जी। तो बेचारा दोबारा तपस्या के लिए बैठ गए वो, अब एक काम तो हो गया स्टेप वन, अभी स्टेप टू। तो शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी तैयार हो गए, जटाएं फैलाया उन्होंने, गंगा जी बहुत जोरदार रूप से आई और फिर वो बोल रही शिव जी का संग कौन छोड़ेगा, जटा में ही रह गई वो, दुनिया परेशान क्योंकि 60,000 लोग तो वो राख बन के पड़े हुए हैं। भगीरथ परेशान, अरे स्टेप टू भी हो गया लेकिन अभी स्टेप थ्री गंगा जी को निकालने का काम करना है। तो फिर गंगा जी का तपस्या शुरू किया वापस एक बार, फिर पार्वती जी ने कुछ षड्यंत्र बनाया, बड़ी सुंदर कहानी है वो। तो फिर गंगा जी को वहाँ निकाला गया, फिर गंगा जी बोले ठीक है अभी मैं वो शिव जी के फिर जटाओं से फिर वो सीमित वेग से बाहर आई, है ना, कंट्रोल्ड स्पीड के साथ बाहर आई। तो उन्होंने कहा कि आगे आगे रथ लेके चलो, पीछे पीछे मैं आऊँगी, पीछे मुड़ के देखना नहीं, आगते रहो जाते रहो। फिर वो रथ लेकर गया 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 गया, तो ऐसे कहा गया पहले वो जो जटा से निकली तो ब्रह्मा लोक में गई, फिर ब्रह्मा लोक से जनलोक में गई, फिर तपलोक में गई, फिर भूवर लोक में गई, फिर स्वर्ग लोक में गई, फिर भूलोक में आई। वो 7 लोग है ना स्वर्ग लोक, उसके एंड में भूलोक है। तो फिर वो जब भूलोक में आई तो भगीरथ यात्रा करते करते आ रहे हैं, फिर वो अपना रथ वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर ये राख पड़ी हुई है। फिर गंगा जी उस राख से चलती है तो सब लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। आपको पता है गंगा जी इतना टाइम क्यों लगा तपस्या होने के बाद प्रसन्न होने के लिए, क्योंकि गंगा जी नीचे आने को तैयार नहीं थी। वो कहती है वो दुनिया में कौन जाएगा, जो दुनिया में जन्म मृत्यु है, बीमारी बुढ़ापा क्लेश झगड़े कलह सब कुछ है उसके अंदर, कौन जाएगा उसके अंदर, आई डोंट वांट टू गो। भले आप तपस्या कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड कि आप तपस्या कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं आना है वहाँ पर, आप मुझे गंदी जगह पर बुला रहे हो। फिर बहुत विनती करके फिर भगवान के पास गई वो, भगवान ने उनको समझाया देखो गंगा देवी चिंता मत करना, मैं आपको वरदान देता हूँ कि जहाँ पर भी आप भोगी उसका सारा किनारा जितना भी रहेगा, कितने भी हजारों किलोमीटर का रहेगा, वो सब तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो नहीं नहीं फिर भी नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि सब लोग स्नान करेंगे मेरे अंदर पाप छोड़ेंगे मेरे को गंदा कर देंगे, मैं नहीं चाहती जाना, हु वॉन्ट्स टू बिकम गंदा। नहीं, साधु लोग भी आपके अंदर स्नान करेंगे, साधु लोग स्नान करेंगे तो सारा जो पाप है उसको स्वीकार करके आपको शुद्ध कर देंगे, आप चिंता मत करना, तभी वो तैयार होगी। क्योंकि उसको भी चिंता है ना, अभी आप उसको गटर में भेज रहे हो तो गंदी हो जाएगी वो, इसलिए खुद को भी चिंता है उसकी। लेकिन जब भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त किया, आश्वस्त हो गई वो, तो फिर वो आई नीचे। उसके बाद में सब स्टेप टू स्टेप थ्री हो गया और फिर वो बहती रही, फिर वो पाताल में चली गई। जो 6 लोग हैं ना नीचे वाले, अतल वितल सुतल रसातल तलातल कुंभीपाक, वो सब उधर चली गई वो, रसातल लास्ट। फिर वहां से फिर वो वापस गौलोक चले गई है। तो जब ऊपर थी वो, उसका नाम क्या पड़ा? आकाश गंगा या मंदाकिनी गंगा। जब पृथ्वी पर आई तो गंगा, भागीरथी गंगा। जब पाताल में गई तो पाताल गंगा उसका नाम हो गया। और जमुना जी और गंगा जी साथ में आई थी। गंगा जी नीचे तक गई और जमुना जी पृथ्वी तक आई, ब्रज में घूमा घूमी, फिर वो यहाँ से ही पृथ्वी से ही वापस चली गई। और गंगा जी जो है वो स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक करके फिर वापस चली गई गौलोक धाम में। ये सब लोगों का निवास स्थान गौलोक धाम है, यह भूलना मत आप इस बात को। ये सब गौलोक धाम की देवियां हैं, नदी के रूप में भगवान की सेवा करती। तो अक्षय तृतीया के दिन पृथ्वी पर उनका एंट्री हो गया। ये दूसरा है, सुदामा और कृष्ण जो है वो इस दिन मिले द्वारका में। सुदामा की पत्नी देख रही थी हमारे पति और हम दोनों कांप रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, खून के अंदर शुगर लेवल कम होती ना, तब हम लोग कांपते हैं ऐसे भूख के मारे। पर सुदामा जी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, सुदामा जी बड़े भजन में मस्त थे, पत्नी भी मस्त थी, लेकिन उनको लगा था कि जरूरत नहीं इतना भूखा रहने की, जब कृष्ण जैसा मित्र है तो वाई टू बी हंग्री, नो नीड टू बी हंग्री इन सफर लाइक दिस। तो भेज दिया उन्होंने कृष्ण को, कृष्ण के साथ जाओ उनको मिलो। तो वे कह रहे हैं कि चलो पत्नी जिद कर रही है, लेकिन मैं कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहा हूँ उनके साथ, आई एम नॉट गोइंग टू गेट समथिंग, मैं तो सोच रहा हूँ ये मौका है मुझे मेरे मित्र को मिलने का, मेरे परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण जो है उसको मैं मिलूंगा। उनके साथ मैंने गुरुकुल में समय बिताया था, मैंने बचपन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ में रहे थे हम लोग। चलो फिर ये इस बहाने मिलने का मौका आया। तो फिर वो पड़ोसी के पास गए, दो चार लोगों के पास गए और कहते हैं कोई घटिया किस्म का पोहा उनको दिया गया उनकी तरफ से, वे भी कहीं भी जाना चाहिए तो कुछ लेके जाना चाहिए ना साथ में कुछ, तो वो घर में कुछ भी था नहीं, तो पड़ोस में जाके उधार लिया उन्होंने, चार जगह से पोहा इकट्ठा किया और पोहा भी बहुत घटिया दर्जे का था, उसकी पोटली बांध दी और चले गए वो। तो ऐसे कहा गया कि वो जब द्वारका के दरवाजे बॉर्डर पे गए ना, सब जगह सैनिक है ना सैनिक, तो फटीचर आदमी उसके बोलते हैं कि धोती में होल ज्यादा कपड़ा कम और ये दंडा है हाथ में और सब थका पराना दाढ़ी बड़ी वैसा, मतलब यात्रा करके आ रहा है। वो कहता है कहाँ जाना है तुमको, तो बोलता है मुझे द्वारकाधीश को मिलने जाना है। क्या देखते हैं ऊपर नीचे, द्वारकाधीश को मिलना है तुमको, चलो जाओ यहाँ से। तो वो अभी द्वारकाधीश को मिलने वाला होता है वो भी ढंग से होगा कि नहीं, उसके दर्जे वाला, उसके इक्वल लेवल का होगा ना वो, ये तो फटीचर आदमी है पूरा, वो द्वारकाधीश को मिलना है उसको। तो उनको लगा कि ये तो गड़बड़ कर रहा है आदमी, इसको भगा दो यहाँ से। उतने में वो पुकारता है कृष्ण को, कृष्ण को वो द्वारकाधीश सुधर्मा सभा के अंदर बैठे हुए, वो सुधर्मा मानी इंद्र की सभा है, वो इंद्र ने सभा भेज दिया था अपना पूरा, क्या बोलते हैं उसका ऑडिटोरियम, दरबार है ना दरबार अपना, वो इंपोर्ट किया था इंद्र के अमरावती से पृथ्वी पर भगवान के लिए, भगवान की सेवा में। तो सुधर्मा में भगवान राज सिंहासन पर बैठे हैं और अपने मित्र की पुकार सुनते हैं और वहां से भागने लगते हैं, भागते पैदल भाग रहे हैं, भाग रहे भाग रहे भाग रहे, सीधा द्वारका के गेट तक पहुंचे और वहां पर मित्र खड़ा है और कृष्ण भगवान वहीं पर उस द्वार पर दरबानों के सामने उनको गले लगाते हैं, अरे सुदामा मेरे मित्र सुदामा। तो सब जो गार्ड होते ना, गार्ड सिक्योरिटी गार्ड, वो सब दंग रह जाते हैं, बाप रे कौन है ये व्यक्ति, इतना फटीचर है, भगवान गले लगा रहे हैं उसको, और गले लगा के कमर में हाथ डाल के उसको ले गए वो दरबार में। वो दरबार में ले गए तो सब लोग देख रहे हैं, अरे सब मंत्री लोग देख रहे हैं, उद्धव बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, अक्रूर जी है, सब कुछ है उसके अंदर, वो देख रहे इतने गंदे फटीचर आदमी को लेके भगवान गले मिलकर ऐसे जब मिलते मिलते आ रहे हैं कि बाप रे कौन है ये व्यक्ति, कभी सुना नहीं इसके बारे में आज तक। तो उनको आश्चर्य हो ही रहा था, वो देख ही रहे थे क्या हो रहा है, उतने में और एक आश्चर्य, वो उसको सिंहासन पर बिठा दिया, उसको सिंहासन पर बिठाया द्वारकाधीश ने अपने। चलो एक आश्चर्य हुआ गेट कीपर के पास, दूसरा आश्चर्य हुआ सभा में प्रवेश करते वक्त, तीसरा आश्चर्य हुआ सिंहासन में बिठाने के बाद में, और चौथा आश्चर्य बाकी है मैडम अभी बाकी है और दो आगे। पत्नी को बोला जाओ पानी लेके आओ, पत्नी ने पानी ला के दिया, फिर उसके चरणों में बैठे और चरण धोए उसके। कितना नंबर आश्चर्य हुआ, चौथा हो ना, पांचवा आश्चर्य, वो पानी लेकर सर पे डाला अपने, बोला रुक्मिणी आ जा इधर, रुक्मिणी के सर पे डाला, सोचो आप। फिर बोल रहे हैं रुक्मिणी जब मैं, फिर पीताम्बर से अपने पीताम्बर से जो सबसे श्रेष्ठ वस्त्र है दुनिया का, वर्षिबेबल मतलब पूजनीय वस्त्र है वो, उसको देखकर भी माया डर जाती है। वो वस्त्र से उनके पैर धोए, पैर पोछे उन्होंने, और फिर अपने पत्नी को बोला पंखा लगाओ इसको। तो पत्नी भाग्य लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी है, वो रुक्मिणी देवी पंखा कर रही है उसको। मतलब एक तरह से एक भिखारी को सिंहासन पर बिठाकर पंखा किया जा रहा है, वो भी अपनी पटरानी के द्वारा। सब लोग देख रहे हैं, हाँ भगवान क्या दिखा रहे हैं, यारी हो तो ऐसी होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है कि तू भिखारी में राजा। हाँ एक दोस्ती ध्रुपद राजा की और द्रोण की थी, जैसे ही ध्रुपद राजा बन गया सब भूल गया दोस्ती। द्रुपद ने द्रोण का अपमान कर दिया, एक गाय मांगने आया था उसका अपमान करके उसको भेज दिया। उसके बाद सारा महाभारत उसकी वजह से हुआ, पता है आप। द्रोण जब अपमानित होकर गया, मैं सबक सिखाऊंगा उसको, उसके बाद सारा महाभारत हुआ। एंड तक वो द्वेष की अग्नि जलती रही, एक तरफ वो द्रुपद और द्रोण है, इनके क्या दोस्ती है। इधर देखो कृष्ण भगवान स्वयं भगवान होते हुए एक तरह से एक भिखारी को इतना सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि वो बालपन का मित्र था उनका। सब यादें करते हैं, बात करते हैं, सब देखते रहे। सभा सभा में व्यवधान आ गया ना, सभा मीटिंग खत्म, मीटिंग बैठे हैं, लोग देख रहे हैं क्या चल गया रहा है इधर। क्या बचपन में बोले हम लोग जंगल में गए थे, वो बारिश आई थी तो तुमने वो ऐसा किया था, फिर वैसा किया था, सब बात कर रहे हैं बैठ के। रानी हवा दे रही है, बाद में बोलते हैं अरे तुमने कुछ लाया नहीं मेरे लिए, भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा। तो उसको बेचारे को शर्म आ रही है, कितने दिन से वो पोहा रखा था उसने, पता नहीं वो पोहा सड़ गया होगा, खराब हो गया होगा, और वो वैसे भी इतना अच्छे दर्जे का नहीं। इतने मेरे मित्र का ऐश्वर्य देखो, इतना ऐश्वर्य है, अरे क्या दिखाऊं पोहा, क्या करूं दिखा के। तो छुपा रहा है, छुपा रहा है, छुपा रहा है, भगवान ने जाके छीन लिया उससे। बोलता है इतना बड़ा धन तुम छुपा नहीं सकते, मैं लेके रहूंगा। ले लिया उनसे, एक खोल के पूरा मुंह में डाल दिया। एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तो रानी ने रोक लिया, बस 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 चौथी बार खाओगे तो मुझे सब कुछ छोड़कर दासी बनना पड़ेगा उसका। तो तीन लोग का साम्राज्य प्राप्त हो गया उसको ऑलरेडी, तुमने तीन बार खाया मतलब तीन लोग का साम्राज्य अभी उसका हो गया, और बार खाओगे तो मैं और आप दोनों दास बन जाएंगे उनके। बस 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 अभी बस हो गया। फिर सुदामा बहुत धन्य हो गए मित्र को मिलकर। हाँ जो बात करने आए थे उसने किया ही नहीं, क्योंकि वो करने के तो आए नहीं थे, ऐसे ही आए थे, वो दर्शन करने आए थे मित्र का। धन्य हो गए, बोले जीवन धन्य हो गया तुमको मिलकर आज। भगवान भी उसको विदा करने के लिए चले गए, और वो ऐसे ही आनंद में रममाण होते हुए, ऐसे आनंद में झूम रहे, हवा में चल रहे हैं। अपने घर के बाद देखते हैं तो सब चकाचक पूरा एकदम महल बना हुआ है पूरा। तो रास्ता तो नहीं भूल गया मैं, आनंद में कहीं रॉन्ग रॉन्ग डायरेक्शन पर आ गया। बोले नहीं नहीं तुम्हारा ही है बंगला। तो बोले चलो चलो महाराज जी आइए, आपका ही घर है। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, देखते तो उनकी सुशीला पत्नी जो थी वो इतनी लदी हुई है, अलंकारों से लदी हुई है, साड़ी देखना उसकी, अलंकार देखना, मुकुट पहनी हुई है, अरे आगे पीछे सैकड़ों दासियां घूम रही है, और पूरा संगे मरवर का सोने चांदी का फर्नीचर बना हुआ है घर में, धान के भंडार भरे हुए हैं, दासियां भी अलंकार पहन के घूम रही है। वो कहते स्वामी वही हूँ मैं आपकी पत्नी। उधर भी लगा उसको, रॉन्ग नंबर लगा उसको, बोले ये शायद गलत नंबर पे आ गया मैं। नहीं नहीं स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ सुशीला। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इतना सारा वैभव उनको भगवान ने दिया, रेडी रखा था उनके लिए जब पहुंचे, तो फिर भी वो बाजू में एक झोपड़ी में झोपड़ी बनाकर ही रहे जीवन भर, और कोई भगवान ने दिया हुआ ऐश्वर्य का उन्होंने भोग नहीं किया, क्योंकि उनका जो आनंद था वो भगवान के भजन में था। उन्होंने कभी भी समझा नहीं कि इसमें आनंद है, उन्होंने केवल भगवान के भजन में अपने आनंद को जो पहले था वैसे ही जारी रखा जीवन भर में। दिस इज डिवोटी, इसको भक्त कहते हैं, है ना। उसके सामने ऐश्वर्य फेंको, उसके सामने पद फेंको, उसके सामने अधिकार फेंको, उसके घर स्थान दे दो, पोजीशन दे दो, उसको ऐश्वर्य दे दो, अनेक लोक दे दो, फिर भी ही विल से नो माय लॉर्ड आई वॉन्ट यू, मैं केवल आपको चाहता हूँ। ऊपर से कहेगा भगवान ऐसे खिलौने फेंक कर मुझे आप मोहित मत करो, मैं ऐसे खिलौनों का व्यापारी नहीं हूँ, ये खिलौनों का व्यापार करने के लिए मैं नहीं आया हूँ आपके साथ। प्रहलाद जी ने क्या कहा था भगवान को, भगवान जी मैं व्यापारी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बिजनेस मैन, मैं आपके साथ व्यवहार करने नहीं आया हूँ, मुझे ये सब प्रलोभन देके मोहित मत करो। श्रीधर कोलवेचा उसको भगवान ने कहा था क्या दूँ तेरे लिए, बोल एक लोक बना दूँ तेरे लिए, एक लोक दे दूँ, लक्ष्मियों को तुम्हारी दासी बना दूँ, सिद्धि दे दूँ आपको, बताओ क्या श्रीधर, बोलो आज आप क्या चाहिए आपको। तो श्रीधर बोलते भगवान क्यों मुझसे व्यापार कर रहे हो, क्यों मुझसे ऐसे सब प्रलोभन दिखा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, ये मैं क्या करूंगा उसको लेके। हम लोग बोलेंगे ऐसा, क्या करूंगा उसको लेके, सब प्लान रेडी है क्या करना है। लेकिन श्रीधर कॉलेज बोल रहा है कि क्या करूंगा मैं लेके उसको। तो ये भी ऐसे ही भक्त हैं। तो सुदामा और कृष्ण की कथा बहुत सुंदर, हमारे मराठी में ड्रामा हुआ करता था, सुदाम्याचे पोहे, सुदामा का पोहा, कितने ड्रामा बचपन में कितनी भाषा में होते रहते हैं। एक दोस्त और एक प्रेम दोस्ती का जो होता है उसका प्रमाण दिया भगवान ने स्वयं। हाँ, हर स्थिति के परे होती है दोस्ती, निस्वार्थ होती है, प्रेम से भरी होती है। तो इसी दिन भगवान ने सुदामा का मुलाकात किया, जो अभी हमारे मंदिर में भागवत कथा चल रही है सुदामा के अध्याय पर। फिर अभी ओके, इसी दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है ना, वो रथ यात्रा का रथ बनाने का काम शुरू होता है। उसको 600 फसी के झाड़ लगते हैं पेड़, तब जाके 3 रथ बनते हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इस्कॉन भुवनेश्वर जो है ना, उन्होंने ब्रिटिश के कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके 150 एकड़ जमीन प्राप्त कर ली, इस वादे के साथ, गवर्नमेंट के वादे के साथ कि हम आपको हर साल 600 पेड़ देंगे। हजारों पेड़ लगा के रखे हैं, इस तरह से गणित करके रखा है कि 600 पेड़ रेडी काटने के लिए मिलेंगे आपको। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इस्कॉन भुवनेश्वर की तरफ से जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए हर साल पेड़ वो प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए सप्लाई करते हैं। हमारे लिए कितनी गर्व की बात है, जगन्नाथ जी का रथ जो है वो हमारे भक्तों के मेहनत से बन जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन वो लकड़ियाँ पहुँच कर वो पहली कटाई करके काम शुरू होता है, और आषाढ़ द्वितीया तक ये 3 रथ तैयार हो जाते हैं। रोड पे ही करते हैं, ग्रैंड रोड के बीच में होना था। तो बनाने का काम कल से शुरू होता है, मतलब अक्षय तृतीया के दिन से, वैशाख शुद्ध तृतीया से लेकर आषाढ़ द्वितीया तक ये पूरा रथ जो है बनकर तैयार हो जाता है। फिर गणेश भगवान ने इसी दिन महाभारत का लेखन आरंभ किया था। बताइए गणेश जी को महाभारत किसने सुनाया? व्यास देव जी ने बताया। व्यास देव जी लिखने वाले थे, लेकिन उनके लेखनिक यानी कि क्लर्क उनके कौन थे? गणेश जी। उनको एक कंडीशन दिया था उन्होंने कि सारे वेदों को उनको लिखना था भगवान के आदेश के अनुसार। तो सारे वेदों को लिखने के समय उन्होंने आदेश दिया था, गणेश जी को चुना उन्होंने कि आप सबसे बुद्धिमान हो तो आप आ जाओ, और एक कंडीशन आपको ऐसा है कि जब मैं जो कुछ कहूँगा आपको जब समझ में आएगा तब आपको लिखना है उसको। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? कि जब तक वो समझने का प्रयास करे तब मैं आगे का सोचूंगा क्या लिखना है, उसके भी टाइम मिलता है ना। अगर लिखने वाला बहुत फास्ट लिखेगा तो बोलने वाले को भी बहुत जोरदार बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप, मैं कुछ कहूँगा और आप उसको समझोगे, अपने बुद्धि के स्तर पर समझोगे, बाद में फिर उसको उतारोगे। जब महाभारत लिखने का समय आया तो अक्षय तृतीया के दिन महाभारत का ग्रंथ का शुरुआत हुआ। आज के दिन सत्ययुग समाप्त होकर, मतलब कल के दिन सत्ययुग समाप्त होकर त्रेतायुग शुरू हुआ। अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी को अक्षय तृतीया के दिन सूर्यदेव की तरफ से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज को और पत्नी को साथ में प्राप्त हुआ। प्रजा को किसी भी समय प्रचुर मात्रा में भोजन कराने के लिए उन्होंने सूर्य को प्रसन्न किया था। देखो कितनी बड़ी भावना है, उनको कुछ कमी नहीं थी। लेकिन आगे जाकर भविष्य में कुछ अकाल पड़ेगा, किसी के पाप की वजह से कुछ भी दुख होगा, खाना नहीं मिलेगा, तो मेरी प्रजा को हमेशा भोजन मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने सूर्यदेव की पूजा की और प्रसन्न करके सूर्यदेव ने उनको अक्षय पात्र दिया था। उसका एक नियम था कि जब अक्षय पात्र में जब द्रौपदी खाएगी तो फिर उस टाइम का सप्लाई बंद हो जाएगा उसका। जब तक द्रौपदी नहीं खाती है तो कितना भी खाना निकालो निकलते रहेगा उसमें से। जब सबका खाना हो गया, देखेगी कोई भूखा तो नहीं है, तो फिर द्रौपदी खा लेगी, फिर वो लंच का सप्लाई बंद, फिर डिनर के समय वापस चालू, जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक। तो आप जानते हैं सब लोग ना, दुर्वासा मुनि बराबर पहुंचे काम्य वन में पहुंचे थे वो, जब पांडव लोग वनवास में थे। उन्होंने ब्रज में भी वनवास किया है, काम्य वन में। हाँ, आप गए उधर? उधर एक पांडव कुंड है और पांडव निवास भी है, एक उनका घर है उधर काम्य वन में, कई बार गए हम लोग। और एक कुंड है जहाँ पर यक्ष ने धर्मराज को प्रश्न किया था, उसको पांडव कुंड भी कहते हैं या तो यक्ष कुंड भी कहते हैं, धर्म कुंड भी कहते हैं। तो बराबर दुर्योधन ने उनको बोला जाओ उनके पास, उनको आशीर्वाद दे कर आऊँ। कूटनीति का काम था ये। तो द्रौपदी ने अभी खा ही लिया था सब कुछ, उसके बाद वो आए 60,000 शिष्यों को लेकर आए। अभी दुर्वासा मुनि आए और उनको संतुष्ट नहीं किया तो वे शापों के ऊपर शाप मिलेंगे आपको, पता था उनको कि अभी तो ऑलरेडी हम लोग तकलीफ में हैं, ऊपर से ये आके शाप देंगे तो फिर जिंदगी भर वन में ही रहेंगे हम लोग। तो कृष्ण को पुकारा उसने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब जीवन में संकट आता है ना और कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, उसके लिए एक ही काम करना चाहिए, कृष्ण को पुकारना चाहिए, हे कृष्ण हे गोविंद हे राधे। तो उस समय भगवान रुक्मिणी के हाथ का 56 भोग खा रहे थे द्वारका में, तुरंत उठ गए निकल गए। वो रुक्मिणी सोचती रह गई, पता नहीं क्या मेरे खाने में नमक ज़्यादा हो गया, कुछ तीखा ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, मैंने सेवा ठीक से नहीं किया, कुछ अपराध किया, पता नहीं, हाँ पंखा ठीक से नहीं किया, पता नहीं क्या है। वो कुछ कहे बिना निकल गए वहाँ से, सीधे काम्यवन पहुँच गए एक क्षण के अंदर। बोले देवकी अपना द्रौपदी, मैं तो खाना छोड़ के आया हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, बोले खाना खिलाओ। बोले केशव तुम क्यों मजाक कर रहे हैं मेरा, मैं तो रो रही हूँ, पुकार पुकार के रो रही हूँ, संकट में हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ नहीं, मेरे को बहुत भूख लग रही है, आप कुछ बात मत करने जाके पात्र लेके आना, उसमें कुछ ना कुछ लगा होगा, देखो। तो एक चावल का कर्ण था उसके अंदर, वो तुरंत भगवान ने लिया और खाया, बोला पेट भर गया, बहुत आनंद आया मुझे आज, ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी कई प्रकार के व्यंजन खाकर मैं संतुष्ट हो चुका हूँ। अभी ये जब रो रही थी और पुकार रही थी तो धर्मराज ने बोला कुछ टाइम तो मांगना चाहिए कुछ, बोले एक आइडिया करते हैं उनको, जो बोलो जाके महाराज जी स्नान करके आइए, आप स्नान करते आपका भोजन तैयार मिलेगा आपको, सोचने के लिए टाइम चाहिए ना बीच में। तो सब लोगों को स्नान करने भेज दिया, तो नदी में सब लोग स्नान कर रहे जमुना जी में, तो स्नान करते करते उनको ऐसा ढकारे आने लगी पेट से, मतलब बहुत भरपेट खीर खाई है ऐसा लग रहा है कि बहुत ढकारे आ रही है। फिर भगवान ने वो चावल का कण खाया, भगवान संतुष्ट हो गए, सबका पेट भर गया, उनको भी ढकारे आने लगी। तो भगवान बोलते हे भीमसेन उठाओ अपने गदा और जाओ और महाराज को बोलो जाओ महाराज आओ भोजन तैयार है। तो भीमसेन गए गदा लेकर, चलो भगवान गदा क्यों, मैं बोल रहा हूँ ना गदा लेके जाओ। तो देख रहे भीमसेन गदा लेके आ रहे से एक इतने बड़े दीर्घ शरीर के। और महाराज जी भोजन तैयार है, तो लोग देख के डर गए उसको कि भाई अगर नहीं जाएंगे तो गदा से मारेगा तो सब मर जाएंगे। तो महाराज जी ने आदेश दिया सब लोग रिवर्स स्विमिंग करो, अभी यहाँ से आए थे ना अभी उधर चले जाओ। ये किनारे से उतरे थे, यहाँ से लौटना नहीं है, उधर जाना है आपको। तो उधर स्विमिंग करके उधर से भाग गए, 60,000 शिष्य भाग गए, लौट के नहीं आए। तो भीमसेन को समझा नहीं क्या जादू क्या हो गया, इतना डर के गए लोग, लेकिन अच्छा हो गया भोजन तो था ही नहीं घर पे, फिर लौट के आए। इस तरह से भगवान ने उनको संकट से बचाया। तो वो अक्षय पात्र जो है वो अक्षय तृतीया के दिन सूर्यदेव ने युधिष्ठिर महाराज को दिया था। यानी भाई लंबी लंबी कहानी है, संक्षेप में कहा जाए तो पावन सरोवर जानते हैं आप नंदगांव में, कितने लोग गए पावन सरोवर? अरे कैसे तुम लोग ब्रजवासी हो यार, पावन सरोवर नहीं गए? हाँ सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, तो ये दो चार हाथ ऊपर हो रहे, क्या शर्म की बात है, हमारे लिए भी शर्म है। हम इतना दिन से आपके साथ में, हम पावन सरोवर लेके नहीं गए आपको, क्या बात है, अगली बार लेके जाएंगे पावन सरोवर। नंदगांव का सरोवर है, नंद महाराज का सरोवर, उसमें नंद महाराज के कई सरोवर हैं, उसमें से एक सरोवर ये है। राजा के तो बहुत होते ना पौंड, अपने जब मर्जी कहीं स्नान कर लो। तो एक दिन वो जा रहे थे प्रयागराज, और प्रयागराज में जाने के लिए मैया कुछ नमकीन और कुछ तला हुआ टिकने वाला सामान बना रही है, उसको कहते हैं मटरी। तो कन्हैया जी पूछते हैं क्या बन रहा है आज, बोलते मटरी बन रही है। बोले ये क्या होता है, बोले ये तो बाबा जा रहे हैं सफ़र करने के लिए, अभी वो कहाँ जा रहे हैं, बोले प्रयागराज में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, बोलते गंगा जमुना सरस्वती नदी का संगम है ना वो, उसमें स्नान करने जा रहे हैं। क्या बात कर, क्या जरूरत है जाने की, फिर भी बाबा बोलते तुम बेटे हो, तुम बच्चा हो, तुमको मालूम नहीं है इसका महत्व क्या होता है, जाना होता है। बोले ठीक है कल जाओ आप, आज द्वितीया है, कल अक्षय तृतीया है, कल के दिन जाओ। बोला अच्छा है मुहूर्त अच्छा है, बेटा तो सही कह रहा है, कोई बात नहीं आज का खावान कल, कल जाएंगे। तो रात को सो जाते हैं और सुबह उठ के भोर के समय अपने सरोवर नंद सरोवर में स्नान करने उतरते हैं। देखते हैं कि सुबह के समय जब अंधेरा होना चाहिए, हे बड़ा प्रकाश है वहाँ पर, वो देख रहे कहाँ से आ रहा है, एक राजा मुकुट पहन के, राज वस्त्र पहन के, अलंकार पहन के उनके सरोवर में स्नान कर रहा है। चलो स्नान कर रहा है ठीक है, उसके बाद में जो कर रहा है वो अजीब कर रहा है। स्नान करके आ रहा है और बाजू में जो मट्टी है उसमें लोटपोट हो रहा है, फिर स्नान कर रहा है, फिर पानी से बाहर आ रहा है, फिर लोटपोट हो रहा है, फिर स्नान कर रहे हैं। महाराज क्या हो गया आपको? जाके बोलते महाराज आपका परिचय तो, आप कौन हो? तो कभी देखा नहीं आपको नंदगांव में। वो कहते मैं प्रयागराज हूँ। अच्छा, वहाँ पर तुरंत दंडवत करते हैं। जिसके जल में स्नान करने के लिए मैं जा रहा था वो शुद्ध यहाँ पर आए और दंडवत करते, महाराज जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहते साल भर मेरे अंदर दुनिया भर के लोग आके स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़कर मुझे पूरा पाप मुक्त, पाप वाला बना देते हैं, पूरा पाप पूर्ण बना देते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन एक दिन कैजुल्लू मिलता है मुझे, वो कैजुल्लू लेके मैं नंद सरोवर में आके स्नान करता हूँ, मेरे सारे पापों से मुक्त हो जाता हूँ। बड़ा आश्चर्य हो गया उनको, जिनके पास मैं यहाँ से जाकर स्नान करने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ वो मेरे पास आकर स्नान कर रहे हैं मेरे कुंड में। बोलते हमेशा आते हो क्या? बोलो हाँ, हर अक्षय तृतीया को आता हूँ स्नान करने के लिए। हर अक्षय तृतीया के दिन आते हैं स्नान करने के लिए। अच्छा, ये बातचीत हो रही है तो बड़ा आश्चर्य हो गया उनको, अरे बाप रे मैं क्यों जाऊँ अभी प्रयागराज के लिए, मैं तो वो स्वयं आके स्नान कर रहे हैं। इधर अपोजिट साइड में देखते हैं तो बहुत सारी देवियाँ स्नान कर रही हैं उधर, तो पूरा क्रॉस करके जाते हैं वहाँ पर गोल घूम के। बोलते हे देवियों आप कौन हो? तो कहते मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैंने सरयू गोदावरी हूँ, मैं सिंधु हूँ, कावेरी हूँ, नर्मदा हूँ, और नाम देते जा रहे हैं। कई हजारों लेडीज वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बोला हम सब लोग साल भर अपने आप लोग स्नान करते हैं तो उनके पाप से हम भ्रष्ट हो जाते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं, फिर शुद्ध होकर फिर अपनी सेवा करने के लिए चले जाते हैं 359 दिन के लिए। अच्छा, तो घर घर जाके बोलते हैं यशोदा सब मटरी घर पे खा लेंगे, हमारा ट्रैफिक कैंसिल हो गया है, अभी टिकट भी कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, कोई ज़रूरत नहीं हमको जाने की। उस दिन से उसका नाम पड़ा पावन सरोवर, और अक्षय तृतीया के दिन प्रयागराज और सारी नदियाँ वहाँ पर आके स्नान करती हैं, अपने आप को धन्य मानकर शुद्ध करके अपनी सेवा में चली जाती हैं। फिर अन्नपूर्णा देवी जो है ना, अन्नपूर्णा देवी पार्वती का एक स्वरूप है, उसका जन्म भी अक्षय तृतीया को हुआ था। और अभी लंबी कहानी रह गई, फिर भी आपको संक्षेप बता देते हैं। हमारे जो माधवेंद्रपुरी जी हैं जो गोलोक के कल्पवृक्ष के अवतार हैं, वो जब पृथ्वी पर आए उनका नाम माधवेंद्रपुरी था, जो ब्रज में आए तो उन्होंने गोपाल जी को प्रकट किया। वो गिरिराज जी के परिक्रमा में है ना, सफ़ेद मंदिर जो जतिपुरा में बड़ा मंदिर ना सफ़ेद, वो गोपाल जी प्रकट किए उन्होंने, और वो गोपाल जी को उस पर स्थापन किया उन्होंने। तो गोपाल जी का कई महीने तक रोज 56 भोग हुआ, कई सारे गांव लाइन में थे, हमारा होगा हमारा, तो कई महीने तक तो हर एक गांव की तरफ से 56 भोग होता रहा। फिर गोपाल जी ने सपने दिया और कहा कि मैं बहुत दिन जमीन के अंदर था, बहुत गर्म हुआ था मुझे, तो तुम जाके चंदन का लेप करो, तुम मलयगिरी में जाओ और वहाँ पर चंदन लाओ, चंदन का लेप करो, तब मैं ठंडा हो जाऊँगा। तो फिर गिरिराज गोपाल जी की सेवा ब्रजवासियों को देकर माधवेंद्रपुरी चले गए, और बहुत महीने चल के उन्होंने बहुत सारा टनों टनों का चंदन इकट्ठा किया। वापस लौटने वाले थे फिर गोपाल जी स्वप्न में आए, तभी वो रेमोना में थे, उसकी भी एक लंबी कहानी है। और रेमोना के गोपीनाथ जी ने उनको के लिए खीर चुराया, तो वो रेमोना जी के पास जब थे, वो चंदन लेकर वापस लौटने वाले थे, तब फिर गोपाल स्वप्न में आए, उन्होंने कहा माधवेंद्रपुरी मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, तो इतना लंबा आने के पहले आप बदले में आप यहीं पर चंदन को घिस लो और मुझे सारा चंदन गोपीनाथ जी को अर्पण करो, मैं और गोपीनाथ एक ही हूँ, वो ठंडक मुझे यहाँ मिल जाएगी, मैं ठंडा हो जाऊँगा। तो अक्षय तृतीया के दिन पहले दिन उन्होंने अपना चंदन घिसकर गोपीनाथ जी को अर्पण किया, उसके बाद लगातार 21 दिन तक जितना चंदन था वो 21 दिन तक वो उनको लगाते रहे, और गोपीनाथ जी को रोज चंदन का लेप होता रहा, यहाँ गोपाल जी ठंडे होते रहे। 21 दिन क्यों? क्योंकि 21 दिन सर पर सूर्य रहता है तेज एकदम, तो चंदन यात्रा जो है वो शुरू हुई उसी की वजह से। जिस दिन खीर चोर गोपीनाथ जी को माधवेंद्रपुरी ने चंदन का लेप लगाया वो दिन अक्षय तृतीया का था, उसके दिन के बाद में 21 दिन तक उनको चंदन लगाया। इसलिए सभी मंदिरों में विश्व भर में भगवान को चंदन यात्रा करते हैं, इसी भाव से कि जब भगवान को ठंडक देंगे तो हमारी गर्मी भी दूर हो जाएगी, इसलिए सब लोग जाके भगवान को चंदन घिसते हैं, और वो चंदन घिसने के अनुभव से सब भक्त लोग ठंड का अनुभव करते हैं। तो ये अक्षय तृतीया कितना महान उत्सव है, देखो कितनी लीलाएं हुई हैं इसमें। कुछ कुछ किस किस को मालूम, मुझे पता नहीं सब मालूम है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, इतना सब मालूम है, इतना काफ़ी है प्रभु, इतना सारा लीला हुआ है उस दिन। तो हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि भारत का जो जीवन है ना वो ऐसे ही कृपा से भरा हुआ है। आज अक्षय तृतीया हुई तो बाद में नरसिंह जयंती आएगी 20 तारीख को, बीच में कुछ आएगा क्या? सीता नवमी आएगी, ललिता सीता नवमी आएगी, जाह्नवा देवी का जन्मदिन आएगा बीच में, कितने उत्सव ही उत्सव लगातार आनंद लेते रहो और भगवान की लीला सुनेंगे, सारा कष्ट मिट जाएगा आपका, सारा तकलीफ दूर हो जाएगा आपका, सारा जो कष्ट क्लेश आपको हो रहा है सब भूल जाएंगे आप जब भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं ना, तो वो श्रवण करने से सब कुछ दर्द मिट जाएगा आपका, आनंद से जीवन भर जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, हरि बोल।